और आगे हमारे बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। जैसे आप कुछ पिछले दिनों से आदरणीय डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी को देख रहे हैं, ही इज एक्चुअली द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एंड सेक्रेटरी ऑफ मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। तो अभी वो हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। आदरणीय भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि आकर अपना सम्माननीय स्थान ग्रहण करेंगे। आज हम जानने वाले हैं कि इस संस्थान की हिस्ट्री क्या है, किस प्रकार से ये जो छोटा सा पौधा था नन्हा सा, ये ब्रह्मा कुमारीज का कैसे लगाया गया और कैसे इतने बड़े वट वृक्ष के रूप में आज पूरे विश्व में 145 देशों से भी ज्यादा में इसके 9000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। तो आज हमको बताने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। और बिफोर दैट भाई साहब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। कई गतिविधियों की शुरुआत के पीछे आप मुख्य प्रेरक रहे हैं। 1985 से मेडिकल विंग के आप सेक्रेटरी हैं। शांतिवन में हेल्थ केयर सेंटर और एवर हेल्दी हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ भाई साहब ने जो अतुलनीय कार्य इस पूरे भारत में और विश्व में किए हैं, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित किए हैं, मेरा भारत स्वस्थ भारत के आप डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ 70 से भी अधिक होलिस्टिक हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंसेस आपने पूरे माउंट आबू में कराए हैं। इसके साथ ही पूरे भारत में 250 से भी अधिक स्वास्थ्य मेले आयोजित किए हैं जिसमें लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। एक विशेष बात, डी एडिक्शन कैंपेन्स और कॉन्फ्रेंसेस भाई साहब अरेंज करते हैं। पूरे भारत में एक रथ जिसको हम कुंभकर्ण का रथ भी कहते हैं, तो उसमें एक तरफ कुंभकर्ण है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है और पीछे उसकी डी एडिक्शन की पूरी प्रदर्शनी है जो लोग आकर के समझते हैं। तो पूरे भारत में वो बहुत सारे रथ हैं जो आज भी दौड़ रहे हैं और उसके माध्यम से बहुत सेवाएं हो रही हैं, क्योंकि ये एडिक्शन का आज बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि चिंताजनक उसकी स्थिति है। साथ ही साथ माउंट आबू में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पर भी भाई साहब ने सम्मेलन आयोजित कराए हैं। इसके साथ ही 2001 में राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से होम्योपैथी के नए आयामों की खोज करने पर होम्योपैथी के कांग्रेस से विशेष सम्मान आपने प्राप्त किया है। साथ ही साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंग्लैंड एंड वेल्स द्वारा अद्वितीय पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। तो ऐसे विशेष पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, तो जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत करते हैं।
ओम शांति। मैं देख रहा हूं कि आप 3 दिन से सुन रहे हैं, जो सुनाने वाले हैं सारा दिन सुनाने वाले हैं, चाहे वो पेशेंट को हो या चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो, और 3 दिन से सुन ही रहे हैं, तो किसकी कमाल है? बाबा की कमाल है कि सुनाने वालों को सुनने वाला बना दिया है, स्टूडेंट बना दिया है। तो हम आपको बहुत दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि कितना धीरज, नम्रता, गंभीरता से हर सेशन को आप सब अटेंड कर रहे हैं। तो हम ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं कि आप ये सब देख रहे हैं, यहां ही नहीं, देश विदेश कहां भी अगर आपको जाना है आप ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे, ऐसा ही है। सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर हमारा कहां है? अमेरिका में है, 350 एकड़ में है। अब आप सोचिए ये कैसे हो रहा है, कोई सेक्रेटरी, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई ये किसी के पीछे कोई इंस्पेक्टर नहीं है, भोजन बन रहा है कोई इंस्पेक्टर चेकिंग नहीं कर रहा है कि ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा है, भोजन खिलाया जा रहा है तो कोई चेक नहीं कर रहा है, अपने आप चल रहा है, खिलाने वाले बहुत प्यार से खिला रहे हैं, बनाने वाले बहुत प्यार से बना रहे हैं, प्यार के अलावा कुछ अनुभव नहीं किए होंगे, ये कहां से? तो ये परम पिता परमात्मा, भक्ति मार्ग में हम सुनते आए हैं, गीता में सुनते आए हैं, शास्त्रों में सुनते आए हैं। मैं समझता हूं कि 3 दिन में आप लोगों को प्रैक्टिकल महसूसता हुई होगी, ये सचमुच परमात्मा का स्थान है, परमात्मा का बनाया हुआ जगह है। इससे बड़े बड़े मंदिर हैं, इससे बड़े बड़े सब हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था, सफाई, सब कुछ हर जगह नहीं मिल सकती। तो हम चलिए, हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं कि संस्था का स्थापना कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। जो बाबा को देख रहे हैं, ये तो जवाहरी थे, हीरे जवाहरात के इनका बिजनेस था, इनको क्या जरूरत थी ये संस्था बनाए, ये करे वो करे, तो बहुत बड़ा हीरे जवाहरात के मर्चेंट थे और इनका राजाओं के साथ संबंध था, इनका बिजनेस राजाओं के साथ था। तो 1936 में बाबा ऐसे बचपन से भक्ति भावना में बहुत आगे गए थे। एक ही लक्ष्य था, मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी थी। बिजनेस भी करते थे, भक्ति भी करते थे। जिस क्षेत्र में पांव रखते थे उसमें बहुत आगे बढ़ते थे। तो 1936 के पहले बाबा गीता पढ़ते थे, गीता पढ़े बिना जल ग्रहण नहीं करते थे। 1936 के पहले आप सोचिए, कलकत्ता में बिजनेस था, पाकिस्तान से कलकत्ता बाई ट्रेन जाते थे क्योंकि फ्लाइट की उन दिनों में इतनी सुविधा नहीं थी। तो दो दिन लगते थे, तीन दिन लगते थे, लेकिन बाबा फ्रेश हो करके, गीता पढ़ करके ही कुछ लेते थे, उनका असूल था। 1936 में बाबा बॉम्बे में आए थे, अपने दोस्त के पास, बाबलीनाथ मंदिर के पास उनके दोस्त रहते थे, तो वहां उनके पास आए। वहां बाबलीनाथ के मंदिर में, जैसे अभी शाम का समय है उस तरह शाम के समय वहां सत्संग हो रहा था, सत्संग में बैठे थे और वहां उनको कुछ आभास हुआ, मुझे कोई खींच रहा है। बाबा इतना ओबीडियंट थे कि कोई गुरु, कोई बड़े सत्संग कर रहे हैं, सुना रहे हैं, तो सत्संग से कभी उठते नहीं थे, कभी उठा नहीं। उस दिन बाबा उठ करके अपने रूम में चले गए, बाजू में ही उनका रूम था। तो बाबा कहां भी जाते थे, अकेले नहीं जाते थे, पूरा परिवार को लेके जाते थे। तो बॉम्बे में आए थे तो पूरा परिवार था, पुत्र वधू थी, वाइफ थी, बच्चे थे। तो पुत्र वधू ने देखा कि बाबा ऐसा कभी करते नहीं है, कुछ तकलीफ हो रही है, बीमारी कुछ है जो सहन नहीं किया, तो उठ करके रूम में गए हैं, देखे कुछ जरूरत है, पानी चाहिए, कुछ दवाई चाहिए, कोई तकलीफ है तो बताएंगे तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो देखा कि बाबा बैठे हैं कुर्सी पर, आंखें लाल, पूरा रूम रेड लाइट। वहां उन्होंने आवाज सुना, उनके पुत्र वधु ने, निजानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शक्ति स्वरूपम स्योहम स्योहम। आवाज कहां से आ रही है, कुछ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है और बाबा तो ध्यान में है। जब ये सुना उन्होंने तो थोड़े देर के बाद बाबा की आंखें खुली, तो उन्होंने पूछा, बाबा आप कहां थे, आवाज कहां से आई। उन्होंने कहा कि बेटी अभी पूछो नहीं, मेरे को शांत में रहने दो। नहीं बाबा, आप बताना पड़ेगा, आप कहां थे, गुरु के सत्संग से आज जिंदगी में कभी आप उठे नहीं, आज क्यों उठ के आए, क्या हुआ। तो उन्होंने दो शब्द में बताया कि कोई प्रेरणा, मुझे कोई खींच रहा था और यहां आए तो मैं ट्रांस में चला गया, मुझे साक्षात्कार हुआ, मुझे कानों में आवाज आई कि परमात्मा आपके द्वारा नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। अब वो साक्षात्कार हुआ तो वो 12 गुरु किए थे उन्होंने अपने लौकिक में कि भाई हमको भगवान का साक्षात्कार चाहिए, भगवान की प्राप्ति चाहिए, आप करा दीजिए। तो सब गुरु हाथ जोड़ करके, पहले के गुरु 1936 की बात कर रहे हैं, उसके पहले की बात तो है, 1936 में तो बाबा की प्रवेशता हुई, तो सब गुरुओं ने कहा कि लक्खी बाबू, लक्खी बाबू उनका नाम था, दादा लेख राज नाम था, तो लक्खी बाबू प्यार से लोग कहते थे, लक्खी बाबू ये आपका पुण्य का काम है जो परमात्मा ने आपको साक्षात्कार कराया है, मेरी मैंने नहीं कराया। 12 गुरुओं ने एक ही जवाब दिया, उनके अलग अलग गुरु थे, अलग अलग उनके निवास पर जाकर के पूछा। फिर बाबा एकांत में रहने लगे, फिर बाबा को प्रेरणा आई, वो बनारस में चले गए, उनका फ्रेंड बनारस में भी थे, तो उनका बहुत बड़ा कोठी था, बगीचा था, वहां बगीचे में रात को रूम में सोए हैं, साक्षात्कार हुआ, उनको आवाज सुनाई दिया, उठो जागो, तुमको विश्व की परिवर्तन करना है। उनकी नींद खुली, देखा कि कोई है नहीं, आवाज कहां से आ रही है, तो दरवाजा खोल करके बगीचे में चले गए, बगीचे में थल्ला बना हुआ था, अंधेरी रात, डर नहीं भाई, जानवर भी हो सकते हैं बगीचे में अंधेरी रात में, नहीं, निडर होकर के बाबा जाकर थल्ले पर बैठ गए। वहां उनको साक्षात्कार हुआ, तीसरा बार विनाश का साक्षात्कार हुआ, सारी दुनिया विनाश हो रही है, 1936 में एटम बम हाइड्रोजन बम का नाम निशान नहीं था, तो वो देख रहे हैं कि बाबा की धरती पर गिर रहे हैं, सारे लोग अस्त व्यस्त हो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है, सब दुखी हैं। तो बाबा घबरा गए, सब देख करके आंखों से आंसू आने लगा। फिर थोड़े देर में देखते हैं कि ऊपर से सितारे आते हैं और लक्ष्मी नारायण, कोई नारायण बन जाता है, कोई लक्ष्मी बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है। तो ये आवाज आई कि आपको ऐसी दुनिया की स्थापन करनी है। और बाबा तो खुद विष्णु के भगत थे, हमेशा पॉकेट में श्री नारायण को फोटो रखते थे, अपने दुकान पर, अपने इसमें भी श्री नारायण, जहां रहते थे श्री नारायण के फोटो उनके पास जरूर होता था, क्योंकि उनके परम भक्त थे। तो उनको साक्षात्कार हुआ कि आपको ऐसा बनना है, वो तो हैरान हो गए कि भाई हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम कैसे ऐसा बन सकते हैं, मनुष्य आदमी ऐसा थोड़ी बन सकता है। फिर वहां से उनको वैराग आया और अपने पार्टनर को लिख दिया कि मुझे दुकान पर नहीं आना है, मुझे अब ये कौड़ियों का बिजनेस नहीं चाहिए, मेरा जो हिस्सा होता है आप मेरे को दे दो। तो पार्टनर ने कहा कि बाबा आपको क्या हो गया है, हीरे के नंबर वन पर रखने वाला व्यक्ति हीरे को कौड़ी बोल रहा है। वो सोचा कि बाबा के दिमाग पर कुछ असर आ गया है कि हीरे को कौड़ी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे दिमाग बहुत अच्छी है, मेरे दिमाग को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ आदेश मिल रहा है, मुझे कुछ ये हो रही है, तो मैं अब ये धंधा नहीं करूंगा। पार्टनर ने जो उसको आया बाबा को दे दिया, बाबा वो प्रॉपर्टी लेकर के घर चले गए कराची में। उनके बच्चे हैं, वाइफ हैं, परिवार है, किसी ने ये नहीं पूछा कि बाबा आप इतना बड़ा बिजनेस क्यों बाइंड अप कर दिया, कम से कम हमारे से राय लेते, आपको सत्संग करनी है तो आप करिए, हमारे बच्चे दुकान चलाएंगे और कोई दुकान चलाएंगे। किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि बाबा को साक्षात्कार हुआ तो शिव बाबा ने कहा कि आप आत्मा हो, तो बाबा को धूम चढ़ गई कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सारा दिन सारा रात एक धूम चढ़ गया। अब वो आत्मा आत्मा कहने से बाबा ने डायरियों पर लिखना शुरू किया, डायरियां पूरी हो गई, इतना धूम था, दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, जसोदा आत्मा, नारायण आत्मा, पुटु आत्मा, ये आत्मा आत्मा। तो इससे क्या हुआ कि बाबा का शरीर भूल गुम हो गया, शरीर में तो थे लेकिन जो भी देखता था तो बाबा या तो श्री नारायण के रूप में देखता था या फरिश्ता के रूप में देखता था, ये एंजिल बैठा है, फरिश्ता है, क्योंकि अपना हिंदू धर्म में बताया जाता है कि जैसा सोचेंगे वैसा होगा। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो बाबा ने संकल्प किया मैं आत्मा हूं। आप लोगों को भी सिखाया गया कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। ज्ञान हो गया, हमको ज्ञान हुआ, हम एक घंटा लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन बाबा लेक्चर नहीं दिया, बाबा अभ्यास किया, अभ्यास किया तो जिसको भी देखता था उसको साक्षात्कार हो जाता था। तो किसी ने बाबा से पूछा नहीं, परिवार वाले, यहां तक वाइफ भी नहीं पूछी, बाबा आपने क्या कर दिया, क्योंकि वो सामने आती थी तो पति के बदले नारायण दिखता था, अभी नारायण से क्या कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपने ऐसा क्यों किया, नारायण को देख करके खुश। तो बाबा घर में सत्संग शुरू किया, ओम की ध्वनि लगाते थे, गीता पढ़ते थे। ओम की ध्वनि लगाने से लोग ट्रांस में चले जाते थे। पहले घर में ओम की ध्वनि लगाया तो घर वाले बैठते थे तो वो ट्रांस में चले गए, ये आवाज पड़ोसियों को मिला, सुनाई सुनने में आया, पड़ोसी आने लगे, वो भी ट्रांस में जाने लगे। ये आवाज पूरे सिंध में फैल गया कि बाबा सत्संग कराते हैं तो सत्संग में जाने वाले ट्रांस में चले जाते हैं, उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता है, नारायण का साक्षात्कार होता है, स्वर्ग का साक्षात्कार होता है, कौन नहीं चाहेगा, हर व्यक्ति हर भगत यही चाहता है कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। सब लोग साधु संतों के पास जो कथा सुनने जाते थे वो सब बाबा के पास आने लगे। बाबा शुरू किया अपने घर में, अब वो इतने लोग आने लगे तो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। तो 400 बच्चे लोग आ गए, फिर बहुत सारी बातें हुई, हम शॉर्ट में सुना रहे हैं क्योंकि समय की पाबंदी है, समय पर पूरा करेंगे। तो वो बाबा इतना ये किया, सारे सिंध के लोग जो साधु संत थे वो नाराज हो गए कि मेरे शिष्य और बाबा के पास चले गए, इनको साक्षात्कार होता है। तो बहुत सारे घमासान भी किए कि नहीं, ये तो बंगाल में रहते थे, कलकत्ता में रहते थे, वहां से मैजिक सीख कर आया है, जादू टोना सीख कर आया है, लोगों के ऊपर जादू कर देता है, साक्षात्कार हो जाता है, ऐसी बातें फैल गई। तो बाबा तो ये, बाबा का तो कुछ ये नहीं था, ये तो परमात्मा को स्थापन करनी थी। लोग आए बैठे, किसी को बाबा कुछ हाथ भी नहीं मिलाते थे, दूर बैठे हैं, बाबा दृष्टि देते थे, शुरू से बाबा दृष्टि दिया। इसलिए योग में आप लोगों को भी कहा जाता है कि दृष्टि, आंखें खुली हो। आप मंदिर में गए हैं या दिलवाड़ा गए होंगे या कहां भी देवताओं के पास जाते हैं तो सबका आंखें खुली होता है, कोई देवता आंखें बंद करके नहीं बैठता है, बैठा हुआ मूर्ति नहीं है, क्यों, आंखों से वाइब्रेशन आता है। तो बाबा, तो ये सब लोग, संत लोग भी आए, उनको भी साक्षात्कार। तो वहां ये संस्था शुरू हो गई। सब लोग जैसे आप अकेले आए, अब आपको भी लगता है कि भी ये बहुत अच्छा स्थान है, बच्चों को ले आते तो उनके भी ये अच्छी चीज की जानकारी होती है। तो उन दिनों में तो उस सिंध में ही बाबा थे और सब बच्चे भी आने लगे, तो माँ बाप परिवार का परिवार आने लगा, तो बाबा ने बच्चों के स्कूल बना दिया और स्कूल बना दिया, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका सारा खाना पीना सब बाबा फ्री। और उन बच्चों को शुरू से संस्कार डाला आध्यात्मिकता का, और वो बच्चे बड़े हो गए तो उनमें उनके जीवन में इतना ये हो गया, छोटे छोटे बच्चे और वो इतनी अच्छी ज्ञान सुनाते थे, उनके माँ बाप या कोई भी साधु संत कहाँ बैठे होते थे गार्डन में या कहाँ, तो बाबा बोलते थे जा करके उनसे ये क्वेश्चन पूछो, तो छोटी छोटी बच्चियां जा करके उनसे क्वेश्चन पूछती थी तो हैरान हो जाते थे, ये छोटी सी बालकी ये क्या पूछ रही है। तो अब उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर सकते, कुछ नाराज भी नहीं हो सकते, तो वो भी हंसते हंसते पूछती थी तो वो भी हंसते हंसते जवाब देते थे, बच्ची ये तुम्हारा काम नहीं है, इतना डेप्थ ज्ञान को सुनने का, तुम खाओ पियो मौज करो। कोई जवाब नहीं देते थे, भाई भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक है, अगर सर्वव्यापी है तो हमारे में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, सब में है, तो ये कैसे हो सकता है। तो कोई जवाब नहीं दे, तो इस तरह से बाबा 14 साल तक 400 बच्चों को तपस्या कराया, बहुत बातें हुई। 14 साल के बाद 47 में बंटवारा हुआ तो उनके माँ बाप इंडिया में आ गए, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सारे हिंदू लोग इंडिया में आ गए। अब बाबा को भी कहे कि बाबा आप भी इंडिया में चलो, तो बाबा का मन था कि चलो ये लोग बुला रहे हैं तो चलें, लेकिन जब सरकार के पास बाबा ने भेजा भाइयों को तो सरकार ने कहा कि नहीं, आपके कारण तो हमारा पाकिस्तान पाक साफ है, आपको कोई तकलीफ है मुझे बताइए, लेकिन आप यहां ही रहिए। अच्छा भाई ठीक है। तो परिवार वाले सब कुछ छोड़ छाड़ करके तो आ गए, बाबा वहीं रहे क्योंकि सरकार की प्रोटेक्शन मिली, सब कुछ मिला। फिर वहां से पत्र आने लगे, फोन आने लगे, नहीं बाबा आप यहां आ जाओ, हम लोग मिलना चाहते हैं, बच्चों से भी मिलेंगे, आपसे भी मिलेंगे, हम संस्था का सारा कारोबार हम संभालेंगे, खर्च हम संभालेंगे, आप आइए। तो सब बच्चों के माँ बाप का जब पत्र और फोन आया तो बाबा ने गवर्नमेंट से बात किया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब तो हम अलाउ नहीं करेंगे इनके माँ बाप को इंडिया से पाकिस्तान में, ठीक है अगर वो लोग बुलाते हैं बच्चों से मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए, तो आप जा सकते हैं। सरकार ने स्टीमर किया और सारा सामान एक आलपीन तक, बोला कि नहीं ये संस्था यज्ञ की चीज है, एक आलपीन तक आप यहां नहीं रखिए, सब कुछ पैक करके सारे लोग छोड़ करके आए। और बाबा जब पाकिस्तान से भारत में आए 51 में, तो एक आलपीन तक सरकार के लोगों ने रखा नहीं, नहीं ये यज्ञ का है, परमात्मा का है, हम इनकी चीज नहीं रख सकते हैं। स्टीमर में सब कुछ पैक करके विदाई किया और ओखा बंदरगाह पर आए और वहां से ट्रेन लिया और माउंट आबू आए। माउंट आबू की भी हिस्ट्री है, ये परमात्मा का काम कैसे हो चलता है। इसके आने के पहले बाबा ने तीन बहनों को भेजा कि आप देख के आओ इंडिया में 400 लोग कहां जाकर रहेंगे, कौन सा बंगला है, कौन सा जगह है जहां 400 लोग रहेंगे। तो किसी संत ने कहा कि आप लोग मेडिटेशन करते हो तो कहीं पहाड़ी पर रहना चाहिए आप लोगों को, और बाबा ने भी, शिव बाबा ने भी संदेश में दिया कि बच्ची पहाड़ी पर रहना है, वहां तपस्या पहाड़ी पर होती है। तो कई पहाड़ियां देखा उन लोगों ने इंडिया में आकर के, कहीं पसंद नहीं आया, कहीं 400 लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं थी। माउंट आबू में किसी ने कहा तो माउंट आबू आए, तो भरतपुर कोठी, जब हम आबूरूट से आते हैं तो लेफ्ट साइड में भरतपुर कोठी राजस्थान राजाओं की कोठी है। ये राजस्थान में पहले गुजरात में था, फिर गुजरात और राजस्थान की बंटवारा हुई तो फिर ये राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में कोई और पर्यटक विभाग नहीं, कुछ और ये नहीं था, तो सरकार ने माउंट को राजस्थान में दे दिया। यहां से 14 किलोमीटर पर गुजरात का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो ये फिर ऐसे करके बंटवारा में फिर सब आ गए वहां, भरतपुर कोठी देखा, उनको पसंद आई। वहां श्मशान है, भरतपुर कोठी बंद है लेकिन बड़ा था, 400 लोग रह सकते हैं, ठीक है। राजा ने कहा कि ठीक है, अगर संस्था है तो मैं आपको दे देता हूं। तो वहां 2-3 साल 4 साल रहे, थोड़े दिन रहे, और श्मशान साथ में था। तो अब ये लोग सिंध हैदराबाद, तो आप समझते हैं कि वो गर्म समुद्र के किनारा है, समुद्र के किनारा कहां भी आज भी गर्म गर्म होता है, बॉम्बे है चाहे चेन्नई है, जो भी समुद्र के किनारे शहर हैं वो गर्म होते हैं, वहां ठंडी होती नहीं है। तो ये जीवन इनका समुद्र के किनारे रहा, ठंडी को इनको पता नहीं था। 14 साल भी रहे तो समुद्र के किनारे शाम को बाबा ले जाते थे इनको घुमाने के लिए, तो ठंडी क्या होती है पता नहीं। अब माउंट आबू आए, मई जून में आए, जून से यहां बारिश शुरू हो जाती है, बारिश शुरू हो गई और गर्म कपड़ा नहीं, बारिश में बहुत ठंडी शुरू हो गई। पहले बारिश बहुत होती थी, आपके आने के पहले यही हम सोचते थे कि हमारी कॉन्फ्रेंस होगा कहां, रूट टूट गया, सब कुछ हो गया। हमने कहा कि नहीं, माउंट में ही करना है, जो यहां का ये है वो नीचे का नहीं है, नीचे भी स्थान है लेकिन अगर बारिश बंद नहीं होगी तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन आप सबके संकल्प से बाबा ने सुना, और जब कॉन्फ्रेंस की शुरुआत था उसके 2 दिन पहले से बारिश बंद, और उसके बाद आई नहीं है, ये कमाल है, उसके बाद बारिश आई और इतना अच्छा मौसम हो गया, खुल गया। तो बाबा ने देखा कि इतने श्रेष्ठ बच्चे, इतने सीनियर डॉक्टर्स आए हैं, इनको कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, भले हमने तकलीफ दिया है माफ करना, लेकिन बाबा ने इतना सारा प्रबंध किया, रोड ये कर दिया। उन्होंने सरकार ने कहा, एसडीएम ने कहा कि बड़ी बसें नहीं आएगी, आज भी नहीं आती है, छोटी बसें छोटी गाड़ियां आती है। हमने बोला कि ठीक है, हम छोटी गाड़ी ऊपर अपने डॉक्टर्स को ऊपर ले जाएंगे। तो ये बाबा का कमाल, यहां से 51 से शुरू हुआ सेवा। अब ये बहने 14 साल तक एक कैंपस में रहे, दुनिया को देखा नहीं, 14 साल के बाद यहां पाकिस्तान से हिंदुस्तान में 51 में आए, 52 से सेवाएं शुरू हुई। अब बेगरी पार्ट हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति का धन कितना तक ये होगा, कुआं होता है उसे पानी निकालते रहो तो एक दिन कुआं सूख जाता है, कितना भी धन हो तो अगर आता नहीं है तो पूरा हो जाता है। बेगरी पार्ट शुरू हुआ, बेगरी पार्ट भगवान का यज्ञ, और बेगरी पार्ट आप बोलते हैं क्यों, भगवान तो दुनिया को ये करने वाला और अपने यज्ञ को नहीं, भगवान को ये लीला रचनी थी कि 14 साल जो तपस्या कराए वो पक्के कौन है। भगवान तो निकाल नहीं सकता है, भाई आप तो आप जाइए घर। तो जब बेगरी पार्ट शुरू हुआ तो कुछ बच्चे बाबा के पास आए कि बाबा हम घर जाना चाहते हैं, घर से हम वहां से माँ बाप से ये करके हम धन भेजेंगे। बाबा कहा कि जाओ बच्चे, भले जाओ। तो कुछ छट गए, कुछ बच्चे जो रहे पक्के, उन्होंने कहा कि मरना है बाबा के साथ मरेंगे, जीना है तो बाबा के साथ जिएंगे। ऐसे बच्चों को फिर बाबा ने सेवा पर भेजा। आज हम कहां भी जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे कहां भी जाते हैं, तो हमारे को लेने के लिए गाड़ी आती है, रिसीव करने के लिए लोग आते हैं। अब ये दादियां सेवा पर गई, अब तो कोई अपना दिल्ली गई, दिल्ली में कोई अपना है नहीं कि कोई लेने आए, कोई छोड़ने जाए। और उन्होंने देखा, 14 साल किसी को देखा नहीं था, तो ट्रेन में गई, अभी इतना पैसा नहीं था कि फर्स्ट क्लास के टिकट बाबा दे, सेकंड क्लास का टिकट दे, थर्ड क्लास का टिकट दे, जनरल बोगी में बैठ करके गई। वहां जनरल में इतनी लोग कैसे लोग होते हैं आप सब समझते हैं, उसकी वर्णन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी एक दादी की दादी गुलजार जो ट्रांस में जाती थी, अव्यक्त बाप दादा उनके तन में आते थे, जो अव्यक्त मुरलियां सुनाई जाती है आप लोगों ने सुना होगा। तो वो दादी को बाबा ने भेजा लखनऊ, तो दादी बोली कि बाबा लखनऊ कहाँ है, हमने तो कभी 14 साल से बाहर ही नहीं गए हैं, लखनऊ कहाँ है, कैसे जाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया तो क्या आप लखनऊ नहीं ढूंढ सकते हो, टिकट लो और जाओ, ट्रेन आपको वहां पहुंचाएगी। दादी ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन में बैठी तो देखा कि ये तो कितना जोर जोर से बोलते हैं, बीड़ी पीते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, थर्ड क्लास जनरल डब्बे में तो ऐसे ही लोग होते हैं। तो जयपुर स्टेशन पर उतर कर स्टेशन मास्टर के पास चली गई, बोला कि बाबू जी ये कैसे आपकी ट्रेन है, कैसे लोग यहाँ बैठते हैं, कैसे लोग क्या क्या बातें करते हैं। तो बोला कि आप टिकट दिखाइए, तो उन्होंने टिकट दिखा, बोला कि जनरल बोगी में तो ऐसे ही लोग बैठेंगे। तो दादी ने कहा कि नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम भगवान के बच्चे हैं। देखिए कितना रूहानियत है। स्टेशन मास्टर ने 2 टिकट अपने अधिकारी को बुलाया, लगे मैं पैसा देता हूं इनको, 2 टिकट फर्स्ट क्लास के निकाल करके दो लखनऊ तक, वो चेंज करा करके फर्स्ट क्लास में भेजा। वहां गए तो वहां देखा कहां जाए, कोई अपना है नहीं, तो कुली से पूछा, कुली ने बोला कि दीदी बाहर इधर से जाते हैं। बाहर गए तो ऑटो रिक्शा वाले, टांगा चलाने वाले जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर, वो हैरान हो गए कि अच्छा ऐसे भी इंसान होता है। फिर भी उन्होंने कहा कि भाई यहाँ धर्मशाला है, बोले कि हाँ दीदी आप मेरे रिक्शा में बैठो, मैं छोड़ के आता हूँ। धर्मशाला में गए तो उन्होंने कहा कि नहीं 2 दिन से हम ज्यादा रखते नहीं है, आपको दूसरे जगह जाना होगा, 2 दिन रहिए, 2 दिन के बाद चेंज करना होगा। ठीक है, तो वो तैयार होकर के बोली कि भाई हमको सत्संग करनी है, हम मेडिटेशन सिखाने आए हैं। तो लोगों ने कहा, धर्मशाला में कुछ लोग ठहरे थे, कि दीदी आप चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, वहां MLA क्वार्टर बना है, वो क्वार्टर खाली भी है और वो अच्छे जगह है, वहां आप मेडिटेशन सिखाइए। उन दिनों में अपॉइंटमेंट वगैरह तो होती नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर के पास चले गए। चीफ मिनिस्टर के बंगलो में और लोग आए थे मिलने के लिए, चीफ मिनिस्टर उतरा अपने बंगलो से लोगों से मिलने के लिए, तो इन लोगों के ऊपर नजर पड़ा, देखा कि इतनी दिव्यता से भरी हुई, इतनी आभा, इतनी आध्यात्मिकता, ये कौन है। तो औरों से नहीं मिला, बड़े बड़े लोग बैठे थे, सीधा इनके पास आया, बच्चियां आप लोग किस लिए आए हो। बहू जी हम माउंट आबू से आए हैं, मेडिटेशन सिखाना है, हम मेडिटेशन सिखाया हैं, आने आए हैं, शांति की ये करने आए हैं, हमको एक आपके पास बहुत सारा क्वार्टर्स है, एक क्वार्टर हमको दे दीजिए। वो बोला कि बहन ये क्वार्टर MLA क्वार्टर है, सरकार का क्वार्टर है, पब्लिक के नहीं दी जाती है, हम तो मेडिटेशन सिखाने आए हैं, हम कौन से जिंदगी भर के लिए मांगते हैं, 3 महीना दे दीजिए, हमारे बाबा ने भेजा है कि लखनऊ में जाकर के मेडिटेशन सिखा करके आओ। अत ये नहीं मिलेगा, वो ना कहे और दादी हाँ कहे कि नहीं आपको देना है। सेक्रेटरी बोलता है साहब बड़े बड़े लोग वहां बैठे हैं, आप चलिए, इशारा दे रहा है उनको, लेकिन वो जा नहीं रहा है चीफ मिनिस्टर। लास्ट में बोला कि भाई इनको एक क्वार्टर 3 महीना के लिए दे दो, 3 महीना के लिए MLA क्वार्टर अलर्ट कर दिया, शिफ्ट कर गए धर्मशाला से, और मंत्रियों को कोर्स कराना शुरू हुआ। उसकी चीफ मिनिस्टर के वाइफ कोर्स किया, उसको बहुत अच्छा लगा, तीन महीना पूरा होने वाला था तो उसने कहा, ये तो आने के लिए तैयार थे, उसने कहा कि नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे, हमारा बंगला जो प्राइवेट बंगला है वो खाली है, हम तो सरकारी बंगलों में रहते हैं, आप हमारे हम अपना बंगला की चाबी देते हैं, वहां रहिए। सेवा शुरू हो गई। इस तरह से सेवाएं शुरू हुई है, इन दादियों ने ये सेवा शुरू किया है। और जगह जगह जाकर के सत्संग कराना स्थापना किया, और उस स्थापना से भाई बहने आते गए, और उनके सहयोग से फिर यज्ञ में हेडक्वार्टर में जो कुछ आता था हेडक्वार्टर में भेजते थे। वो लोग इतने ऑनेस्ट हमारी दादियां थी, कोई इतना बड़ा तरबूजा दे दिया, अमृतसर में कोई गर्मी का दिन था, इतना बड़ा तरबूजा दे दिया जी, दादी आप लोग तरबूजा खाना, गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी वो दादी, दो दादियां थी, और वो बोली कि मैं तरबूजा इतना बड़ा खाऊं, मैं बाबा के पास भेज दूं, वहां बहुत बच्चे हैं, वो तरबूजा एक एक टुकड़ी बाबा सबको खिलाएंगे। तो तरबूजा पर अभी कुछ पैसा नहीं था जो ये करें पार्सल करें, तो उस पर बाप दादा लिख करके माउंट आबू लिख करके भेज दिया, ट्रेन में वो डाल दिया लगेज में, वो लुढ़कते पुढ़कते उन लोग, उन दिन को लोग अच्छे थे, नहीं तो आज हम तरबूज भेज दे कोई उसका लिखा पड़ी ना हो तो बैठ के काट करके खा कर पूरा कर दे। वो आबू उठाया, उसने उतार करके ये किया, उन्होंने फोन किया कि एक तरबूज आया है, आप आ करके ले जाइए। इस तरह से यज्ञ चला है सबके सहयोग से, जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतनी सब चीजें, ये सबके सहयोग से बना है। क्योंकि बाबा का काम, हम भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते आए हैं, लेकिन जितना किया उतना ही मिला। यहां हम जो करते हैं, एक का पदम गुणा बाबा देता है, एक पैसा करते हैं तो पदम गुणा उसका रिटर्न भगवान देता है। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे है? क्योंकि सतयुग त्रेता कोई चीज की कमी नहीं है, वहां नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, खाने पीने की ढूंढने की जरूरत नहीं है, बच्चों की पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतना सब धन्य धान्य संपन्न। तो ये यज्ञ बढ़ता गया बढ़ता गया। बाबा को उमंग था, बाबा मुरली चलाते थे, आज जो मुरली सुनाई जाती है उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, लिथो कर लिया गया। वो मुरली बाबा चलाते थे तो कहते थे, वो पांडव भवन देखा होगा नहीं तो जरूर देख के जाएगा, हिस्ट्री हॉल था, हिस्ट्री हॉल के पहले छोटा सा एक कमरा था जहां सत्संग होता था क्योंकि दादियां ही थी। फिर वहां चलाते थे कि बच्चे एक दिन सारे विश्व के लोग आएंगे, अंग्रेज आएंगे, तो बाबा उमंग में मुरली चलाते थे। तो वो तो दादियां पूछ नहीं सकती है क्लास में, जब बाबा मुरली चला करके क्लास करा करके अपने रूम में जाते थे, अपने चेंबर में जाते थे, तो वहां बुजुर्ग थे तो छोड़ने के लिए दादियां जाती थी। तो दादी गुलजार ने सुनाया कि हम पूछ दिया कि बाबा आज आपने मुरली बहुत अच्छी चलाई है, मजा आ गया है, लेकिन आपने एक बातें कही जो समझ में नहीं आया कि यहां अंग्रेज आएंगे, हम दादियां हम बहने तो कोई अंग्रेजी जानती नहीं है, उनको कौन अटेंड करेगा, कौन समझाएगा, कौन बैठाएगा, कौन क्या करेगा। तो बाबा उनको देख करके मुस्कुराया और कहा, बच्ची समय आएगा हो जाएगा, आज 140 देशों में आश्रम है और 140 भाषाओं में सब हमारी बहने वहां ट्रेनिंग लेकर के और सेवाएं कर रही है। तो भगवान की मावा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में, इनकी नहीं, हम इनको गुरु नहीं मानते हैं, ये गुरु बनना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कभी इन्होंने पांव को हाथ नहीं लगाने दिया, कहा कि नहीं हम भी बच्चे आपकी तरह, हम भी एक स्टूडेंट है, भल बाबा आता है मेरे में, वो मेरे मुख से बोलता है, लेकिन मैं गुरु नहीं हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, हम एक स्टूडेंट है, हम बड़ा स्टूडेंट जरूर है क्योंकि मेरे में भगवान आता। ये अभिमान नहीं, कभी अपनी पूजा नहीं कराया, बच्चों की संभाल किया। जब बोर्डिंग शुरू हुई तो आप सोचिए, सीजन में कोई अन्न सीजनल फ्रूट आता है, जैसे मान लीजिए अभी आम का सीजन नहीं है, आम आए तो जरूर महंगा होगा, तो ऐसे अनसीजनल फ्रूट होता था, बाबा को पता लगता था, बाबा बोलता था जी नहीं खरीद करके लाओ, बाबा महंगा है, अरे बच्चे हम अपने ठाकुर बच्चों को खिलाएंगे, ठाकुर माने भगवान, हम अपने ठाकुर बच्चों को खिलाना है, लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, कितना महंगा महंगा चीज ला करके भोग लगाते हैं जबकि वो खाते नहीं है, ये हमारे ठाकुर तो खाने वाले हैं, तो चीज मंगा करके बाबा अपने हाथ से धुलाई करके चाकू से एक एक फांक बच्चों को खिलाते थे, इतनी पालना किया भगवान ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में। हमारी दादी सुनाती थी कि हम लोग एक हॉल था, तीन रो था पलंग का, हम बच्चे सोते थे तो बाबा आते थे गुड नाइट करने के लिए, हर पलंग पर मच्छरदानी होती थी, कोई मच्छर उसमें घुस न जाए और इनको डिस्टर्ब नहीं करे, नींद अच्छी आए, इस तरह से पालना करके। दादी सुनाती थी कि ऐसा पालना बड़े बड़े महाराजाओं के बच्चों को भी नहीं हुआ है, जो भगवान ने हमारी पालना किया है। तो बाबा ने पालना करके और इन बच्चों को इतना बड़ा किया, और ये कैसी भी पेपर आया ये लोग हिले नहीं, समय के अभाव है, नहीं तो हम ऐसे 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 दिन आए, 400 लोग हैं भंडारी में, चार आना पैसा नहीं है, नाश्ता क्या बनेगा, अब आप सब माँ बाप बैठे हैं, सुबह आपके घर रसोई घर में कुछ अन्न ना हो, सब्जी ना हो, फ्रूट ना हो, कुछ दूध ना हो, तो चिंता होगी ना, सुबह चाय बच्चों को क्या देंगे, नाश्ता क्या देंगे, लेकिन बाबा को कोई चिंता नहीं। बाबा बोलते थे कि ये बच्चे शिव बाबा के हैं, मेरे थोड़ी हैं, शिव बाबा सारे विश्व को चलाता है, विश्व को बच्चों को खिलाता है, क्या अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा, मैं बैठ के क्यों चिंता करूं। नहीं, वो ईश्वरीय नशे में रहते थे, मुरली चला के आते थे, 93 ईयर्स से 6 फीट का बाबा, और आकर के घुटनों के बल पर चलते थे, जैसे बच्चे चलते हैं ना छोटे बच्चे, तो उस तरह से चलते थे, नशा है कि बूढ़ा शरीर छोड़ेंगे, कल मिचनू बनेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, हम कृष्ण बनेंगे, ऐसे चलेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कहां बूढ़ा शरीर, कहां कृष्ण, यहां ये बहुत गुई रहस्य है, ब्रह्मा सो विष्णु सो श्री कृष्ण, ये ब्रह्मा का शरीर, ये 84वां श्री कृष्ण का जन्म है, 84वां जन्म ये शरीर के बाद ब्रह्मा बाबा 49 में शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, दूसरा जन्म नहीं लिया, वो शिव बाबा के साथ रह करके और सेवाएं कर रहे हैं। बाबा ने शरीर क्यों छोड़ा, इसलिए कि ये शरीर है तो हमको जगह जगह टिकट चाहिए, ये चाहिए, वीजा चाहिए, ये चाहिए, शरीर छोड़ दिया, अब अव्यक्त होकर के भगवान के साथ शिव बाबा के साथ दोनों एक सेकंड में चारे विश्व का भ्रमण कर लेते हैं, कोई वीजा की जरूरत नहीं है। और बाबा के अव्यक्त होने के बाद, बाबा के टाइम में 100 सेंटर मुश्किल से थे भारत में, विदेश में तो था ही नहीं, खाली बाबा संकल्प करता था, अव्यक्त होने के बाद सेंटर खुलना शुरू हो गए, लोगों को साक्षात्कार घरों में, वो लोग भाग करके आते थे, सेंटर खुलना शुरू हो गया। बाबा अव्यक्त बाबा आए थे, और दादी जानकी जो 104 साल तक सेवाएं दिया है, उनका ये नीचे बना है, वो अंग्रेजी नहीं जानती है, हिंदी नहीं जानती है, बाबा ने बुलाया है, इधर आओ जी बाबा, आपको विदेश जाना है। बाबा मैं हिंदी नहीं जानती हूँ, अंग्रेजी तो जानती ही नहीं हूँ, मैं विदेश में क्या करूंगी। अत नहीं, ऐसा मधुबन, जो पांडुवन है ना उसको मधुबन बोलते हैं, ऐसा मधुबन आपको बनाना है। अरे भाई कैसे मधुबन बनाएंगे, कोई डॉलर नहीं बाबा ने दिया, टिकट दे दिया, और आजकल तो हम लोग व्हील वाली अटैची खींच करके स्टेशन पर एरो ड्रम पर जाते हैं, उन दिनों में बेगरी पार्ट था, अटैची का नाम नहीं था, टीन के वो अटैची हुआ करते थे। तो दादी ने कपड़े के थैले में 2 ड्रेस डाला, कंधे पर लटकाया, चल दिया। लंदन में गई, तो एक छोटा सा रूम मिला उनको, उस रूम में उसी में सोना है, उसी में क्लास कराना है, उसी में भाषण करना है, उसी में सब कुछ करना है। वहां से दादी शुरू किया, अभी कौन आएगा, कौन अंग्रेज इनकी बात सुनेगा, लेकिन वाइब्रेशन, सुबह उठ करके दादी वाइब्रेशन देती थी, मुरली ऐसे पढ़ती थी जैसे 500 लोग सुन रहे हैं, और वो वाइब्रेशन, अंग्रेज आने लगे, इंडियन आने लगे, सब आने लगे, और आज लंदन में 500 का क्लास है, आज अमेरिका में 350 एकड़ में, इंडिया में हमारा कोई भी रिट्रीट सेंटर नहीं है, वहां 350 एकड़ में रिट्रीट सेंटर बाबा ने कराया। तो कहने का भाव है कि परमात्मा का काम है, हम एक बीज डालते हैं वो पदम गुना होकर के होता है। गरीब माताएं गांव में सुनती है, वो चार आना पैसा देती है, बाबा उसको उछालता था, देखो ये बच्ची ने चार आना पैसा दिया है, इसको बाबा एक ईंट लगा देना, मकान बनते थे तो ईंट लगा देना, बाबा हम बच्चे तुमको महल देंगे। अब उस सज्जुग में जाएगी तो मिट्टी का मकान में रहेगी, हीरे जवरात का मकान होगा, सज्जुग में जो भी होगा हीरे जवरात का मकान होगा, धन्य धन्य संपन्न होगा, दिया क्या, एक ईंट लगाया। तो इस तरह से सेवाएं बढ़ी, आज पूरे विश्व में यूएनओ में हर जगह बाबा ने अपना, यूएनओ में भी ऑफिस है, यूएनओ में 7 बार पीस मेडल मिला है, पहले दादी जी को मिला, उसके बाद 7 बार पीस मेडल यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी ने दिया है, अनुभूति करके। उनके जनरल सेक्रेटरी यहां आते थे, हमारा यूनिवर्सल पीस हॉल है, यहां हम पीस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो आते थे, जेम्स जोना थे सेक्रेटरी, उन्होंने ये अपने भाषण में कहा कि हमने आज तक कोई भाई नहीं कहा, यहां जो भी कहता है भाई आप कैसे हो, वो तो इंग्लिश समझने वाला, ब्रदर कहते थे, हमको अपनापन आया संस्था से, अंग्रेज इतना बड़ा बोलता कि ये संस्था मुझे अपना घर लगा। बड़े बड़े नेता आए, बहुत लोग आए, और तब से इतनी सेवाएं शुरू हो गई कि मैं क्या बताऊं, चारों तरफ धूम मच गई। बाबा अव्यक्त हुए और अव्यक्त होकर के शिव बाबा के साथ दोनों चारों तरफ साक्षात्कार कराए, लोगों को प्रेरणा दिए, लोग आए और जुटते गए। मैं सच बताऊं, 82 में हमारी पीस कॉन्फ्रेंस होती थी तो वर्कशॉप होता था, वर्कशॉप में कौन आते थे, वर्कशॉप में डॉक्टर का अलग होता था, इंजीनियर का अलग होता था, और वर्गों का अलग होता था। तो हम डॉक्टर की वर्कशॉप अटेंड करते थे तो परिचय होता था, तो कौन, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचर क्योर, MBBS एक भी नहीं होता था, और वो लोग पीस कॉन्फ्रेंस में आते थे। आज वो दिन आया, देखिए कि आप इतने श्रेष्ठ, इतने सीनियर डॉक्टर कौन करा रहा है, हमारे बुलाने से आप आएंगे नहीं, बाबा प्रेरणा दे रहा है। और एक एक डॉक्टर इतना खुश होकर के गया है, कोई कंप्लेन नहीं किया कि आपने मुझे बुलाया और कहां रखा, रहने की तो कोई जिक्र नहीं किया, और इतना खुश होकर के एक एक डॉक्टर मेरे से मिल के गए, प्रसाद लेके गए, और बोल के गए नहीं अब हम जा करके 7 डेज का कोर्स भी करेंगे, कितना भी व्यस्त हैं हम इस शांति को, इस चीज को अपने जीवन में उतारेंगे। तो इस तरह से संस्था चारों तरफ बढ़ती गई। अब एक पांडव भवन था, छोटा सा पांडव भवन जाकर देखेंगे। अब बाबा पांडव भवन में तो मुश्किल से 200 लोग रहेंगे, 300 लोग रहेंगे, 300 बाद में, पहले तो थोड़ा ही लोग होते थे। तो बाबा दादी प्रकाश मणि को बुला करके शाम को आते थे, सब बच्चों से मिलते थे, भगवान ऐसे मिलते थे जैसे आपके घर में आपका बच्चा आता है तो उससे कैसे आप बात करते हो, कैसे मिलते हो, उस तरह से भगवान हम बच्चों से मिलता था, बातें करता था। तो तो दादी जी को बुलाया, दादी प्रकाशमणि को, और कहा कि बच्ची आप देख रही हो इतने बच्चे आ रहे हैं तो उनको रहने के लिए, उनके सोने के लिए, उनके ये करने के लिए स्थान ढूंढो, मकान ढूंढो। दादी बोलती है कि बाबा माउंट आबू में कंस्ट्रक्शन बैंड है, कोई मकान मिलता नहीं है, कोई जमीन मिलती नहीं है और कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है। बाबा को बोला कि सब कुछ हो जाएगा। रात को 1 बजे बात हो रही है, भगवान कर रहा है दादी जी से, हम सब सुन रहे हैं। प्राइवेट कोई बात भगवान नहीं करता है, माइक पर बोलता है, सब सुन रहे हैं। दूसरे दिन ये साल गांव है, ये लोग जब से 51 में बाबा आए तब से ये लोग दूध देते हैं और इनको बच्चों की शादी करनी थी तो दादी के पास आए, हमारे से कहा कि दादी जी से आज मिलेंगे। हमने क्यों भाई, आपको क्या चाहिए, कुछ बात है तो मेरे को बताओ, हम पूरा कर देंगे। अत नहीं, आपसे नहीं बात करेंगे, दादी जी से बात करेंगे। दादी जी को जाकर के बताया कि दादी जी दूध वाले आज आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं दादी जी से मुझे मिलाओ। दादी ने कहा कि अरे गरीब है, इतने सालों से सेवा करते हैं, मिलना चाहते हैं तो बुलाओ। दादी मीटिंग में थी, मीटिंग छोड़ करके बोली कि नहीं हम उनसे मिलेंगे। दादी के पास वो बैठा दिया, उन्होंने कहा दादी जी बच्चों की शादी करनी है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे ये जमीन निकालना है। देखिए रात को बात हो रही है, दादी ना कह रही है, भगवान कहा कि मिलेगा इसलिए मैं सुना रहा हूं। तो वो 10 बजे आकर के दूध रख करके और दादी से मिल रहे हैं, बच्चों की शादी करनी है, ये करना है, आप लीजिए, अगर आप नहीं लेंगे तो जाके होटल वालों को देंगे। पहले हम बाबा के घर में आए हैं। दादी ने कहा कि नहीं, आप इतना आस रख कर आए हो तो हम लेंगे, जमीन कहाँ है आप दिखाएंगे, हाँ चलिए हमारे साथ। तो हम 3-4 भाइयों को दादी ने भेजा, वो रोड डामर रोड है, वही रोड था, ये रोड नहीं था। तो हम लोग आए, पगडंडी था, जंगल था, झाड़ियां थे, उन्होंने दिखाया कि हमारा जमीन है। जमीन हम लोग देखा तो एक पौधा, एक पेड़ भी नहीं था, अगर पेड़ था तो उसको टहनियों को काट करके उस जानवर को, बकरी को, भेड़ को खिला दिए थे, कुछ नहीं था, कंटीली झाड़ियां थी, खंडहर था। हम लोगों को तो पसंद आया नहीं कि एक लेके करेंगे क्या। दादी जी को जाके सुनाया, दादी को सुनाया तो दादी बोली कि नहीं हम देखना चाहते हैं, हमको दिखाओ। शाम का टाइम था, दादी जी को लेकर आए, हम बोला कि दादी वो बहुत पैदल चलना पड़ता है, रोड नहीं है। दादी ने कहा कि क्या बात है, जब आप लोग जा सकते हो तो दादी को क्या समझा है, हम आपके साथ चलेंगे। दादी आया और पीस कॉटेज के सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर खड़ा होकर के 15 मिनट डीप साइलेंस दृष्टि देती रही और उसके बाद कहा कि कुछ भी है आप इसको ले लो, उनको बुलाओ और इसको ले लो। ये ले लिया गया, दादी कह रहे तो फिर कोई दूसरा बात ही नहीं है, लिया गया, रजिस्ट्री हो गई, अब इसको नक्शा बनाना है तो ये एग्रीकल्चर लैंड है, कौन नॉन एग्रीकल्चर में करेगा। राजस्थान सरकार का नियम नहीं था उस समय, भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर होते थे, उनको एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना था, कुछ मकान बनानी थी, कुछ प्रोजेक्ट उनका था पर्सनल। उन्होंने 8 दिन के लिए रूल निकाल दिया, अखबार में निकाल दिया कि किसी को भी अगर एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर में करना है तो 8 दिन छुट्टी है सरकार की, अपना जमीन करा सकते हैं। तो हम लोगों ने फटाफट करा लिया, अभी नॉन एग्रीकल्चर में आ गया, नक्शा बन गया, और पास कौन करे। तो पास करने के लिए हम म्यूनिसपैलिटी में गए, नहीं जयपुर जाकर के सेक्रेटरी से मिले, वो बोला कि इतना बड़ा मकान आप लोग बना रहे हो हम नहीं पास करेंगे, रिजेक्ट कर दिया। लेके हम घर आ गए, लेकिन परमात्मा का काम है ना। गर्मियों के दिनों में यहाँ राजभवन है, पांडव भवन के सामने ही राजभवन है, गर्मियों के सीजन में बच्चों को समर सीजन हम बच्चों का प्रोग्राम रखते हैं, बच्चे छुट्टियां होती है गर्मियों के, तो जिनके माँ बाप ज्ञान में चलते हैं तो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। 300 बच्चे आ गए, दादी ने कहा कि गवर्नर साहब आए हैं, उन दिनों में चन्ना रेड्डी गवर्नर थे, और बोला कि गवर्नर साहब को बुलाओ, बाल शिविर का उद्घाटन उनसे कराएंगे। हम लोग गए गवर्नर साहब को निमंत्रण देने, बोले कि जरूर आऊंगा, हमारे पास यहाँ तो कोई ऐसी काम नहीं है, दादी बुला रही है तो मैं आऊंगा। शाम को गवर्नर साहब आ गए, 3000 बच्चे बैठे हैं वो यूनिवर्सल पीस हॉल में, कोई हिल नहीं रहा है। गवर्नर साहब बोलते हैं, अरे दादी जी आपने इन बच्चों को क्या किया, बच्चे तो तूफान मचाते हैं, शोर करते हैं, बातचीत करते हैं, ये तो कोई हिल भी नहीं रहा है, बात करने के बातें छोड़ दीजिए। दादी ने कहा कि बच्चे ये सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं। तो चौंक गया कि मेडिटेशन क्या होती है। तो दादी ने, गवर्नर यहां बैठा है, दादी जी यहां बैठी है, तो उनके कान में सुना रही हैं कि मैं आत्मा हूं, हमारा पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, आत्मा परमात्मा को याद करती, यही मेडिटेशन है। बोलता है कल से मैं आऊंगा सीखने के लिए। दादी बोली कि नहीं आप नहीं आइए। क्यों, हम क्यों नहीं आएंगे? और तो रोज आप आएंगे तो अबू वालों को हो जाएगा कि पता नहीं ब्रह्म कुमारी में क्या हो गया कि रोज गवर्नर जा रहा है, तो हमारी तो ये हो जाएगी, इसलिए नहीं, हम दो बहनों को आपके राजभवन में भेजते हैं, वहां कोर्स कराएगी। अच्छा ठीक है, वहां भेजिए। 7 दिन का कोर्स हो गया, उनको इतना अच्छा लगा राजभवन में अपना बेडरूम को, बोला कि नहीं ये मेडिटेशन रूम बनाएंगे, और बना दिया। दादी को बुलाए कि इसको उद्घाटन करिए। दादी गई उद्घाटन करने के लिए। वो यहाँ 1-2 महीना वो लोग रहते हैं, कोई भी गवर्नर होता है 2 महीना रहा, उसके बाद आया कि दादी जी मुझे काम दीजिए, इतना अच्छा आप इतनी सेवा कर रहे हैं, मुझे भी कुछ सेवा का चांस दीजिए, मैं अपना भाग्य तो बनाऊं। दादी ने बोला कि ये यज्ञ आपका है, जो चाहिए वो करिए। बोला कि ऐसा नहीं, हमको पार्टिकुलर कुछ काम दीजिए, एक काम नहीं हो रहा है वो काम आप करके दीजिए। दादी ने कहा कि एक जमीन लिया है, उसका नक्शा कोई पास नहीं कर रहा है, आप करवा दें तो बहुत अच्छी बात है। बोला कि आप भेजिए। गवर्नर गया, भैरव सिंह की शेखावत का 2 दिन में उनका राज खत्म हो गया, गवर्नर रूल लागू हो गया, और सारा हाथ गवर्नर को सारा पावर आ गया। और गवर्नर ने फोन किया, वो नक्शा भेजो, नक्शा गवर्नर को दिया। दूसरे दिन सारे सेक्रेटरी को बुलाया, गवर्नर हाउस में मीटिंग किया, बोला कि ये पास करना है। बोला कि सर हमारे पास आया था, हमने रिजेक्ट कर दिया, इतना बड़ा मकान हम कैसे पास करेंगे, नहीं कर सकते हैं। नहीं करना ही होगा, जो भी नियम बनाना है बनाओ और पास करो। अभी गवर्नर बोलेगा, सेक्रेटरी ना कहेगा क्या, सब ने कर दिया साइन, और हमको ये हो गई, हम पेपर लेके आ गए। अब दादी ने कहा कि नहीं, ये गवर्नर साहब ने पास कराया तो उनको बुलाएंगे हम, और इनके द्वारा इसका भूमि पूजन कराएंगे। गवर्नर साहब आए, इसका भूमि पूजन किए और बोला कि दादी जी इतना बड़ा खंडहर है, आप कहां से बनाओगे? बोला कि बाबा बैठा है वो बनाने वाला है, दादी के पास कोई पैसा है क्या कि बनाएगी? तो उन्होंने, देखिए कितना भगवान का काम कैसे चल रहा है, यूनिकता मैं इसलिए सुना रहा हूं। तो गवर्नर साहब चले गए, 1 साल में आए तो दादी जी ने सब जगह डायरेक्शन दिया, सभी सेंटरों को, हर व्यक्ति हर स्टूडेंट 1 रुपया पर डे इस ज्ञान सरोवर के लिए डाले। अब 1 रुपया कौन सी बड़ी बात है, वहां भंडारी रख दिया, जैसे यहां भंडारी है होगा, तो भंडारी रख दिया सेंटरों पर, 1-1 रुपया डालने शुरू कर दिया। उन दिनों में 5 लाख हमारे भाई बहने थे, 5 लाख रोज का इनकम आ गया, और 5 लाख रोज का इनकम आ गया तो वो 1 साल में ये ज्ञान सरोवर बन गया। दादी जी ने गवर्नर को बुलाया कि सर अब इसका उद्घाटन कीजिए। गवर्नर देख करके हैरान हो गया, अरे मैं 1 साल पहले खंडहर था, कुछ नहीं था, पेड़ भी नहीं थे, और दादी जी आप 1 साल में बना दिए। बोला कि जितने इंजीनियर थे बाबा के बच्चे, वो फ्री आकर के दिन रात सेवा किए हैं, मजदूर काम किए हैं, और बाबा ने ये काम करा दिया। कहां से पैसा आया? आ तो हर स्टूडेंट 1-1 रुपया पर डे दिया। गवर्नर हैरान हो गया कि भगवान का ही काम है, मनुष्य का काम हो ही नहीं सकता। इस तरह से सारा संस्था का काम, आप 4-5 जगह जो हमारा बना है, अब यहां बन गया, और भाई बहने तो बहुत आ रहे हैं, तो बाबा ने बोला कि ये सेवा का खान होगा, बड़े बड़े लोग आएंगे, अंग्रेज आते हैं इतना खुश होकर जाते हैं, हम उनका रिट्रीट करते हैं, उनका हम ये करते हैं, डायलॉग करते हैं, उनका पीस ऑफ माइंड कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतना खुश होकर के जाते हैं, बताइए क्या मिलता है साधारण एकोमोडेशन। तो बाबा अपना काम करा रहा है। फिर उसी तरह तलहटी नीचे जो आप देखे हैं वहां 25,000 लोगों का रहने का स्थान है, वहां एक छोटा सा जमीन लिया गया, क्यों भाई, तो सारा सामान सब कुछ नीचे से ऊपर आता है, यहाँ कुछ बनता नहीं, कुछ होता नहीं है, दुकान है थोड़े से वो लोग सामान रखते हैं, हमारा तो ट्रक के ट्रक आता है, सब्जी आता है तो ट्रक भर करके आता है, चीनी आइए चाहिए तो 50 बोरी एक साथ आता है, अब यहाँ तो कोई दुकानदार के पास 50 बोरी नहीं है, तो सब सामान नीचे से आता था। तो हमारा जो ट्रक चलाने वाला मिलिट्री का भाई था, दादी को बोला कि दादी रात हो जाती है, मार्केट से आते हैं जयपुर से या कहां से, तो बारिश होती है, चीनी ऊपर ले आएंगे तो गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वहां रहने के लिए एक शेड बनाने के लिए थोड़ी जमीन लेते हैं। दादी ने कहा कि भर ले लो। वहां ट्रक रखने का स्थान बनाया गया। आज वहां जब यहां सरकार बनाने का छुट्टी नहीं दे रही थी तो नीचे जमीन लेकर के वहां एक सेंटर बनाया गया जहां 25,000 लोग रहते हैं। वो छोटा पड़ गया तो वहां एक मनमोहिनी वन बनाया गया, 5,000-7,000 लोगों को रहने के वो बनाया गया। वो भी छोटा पड़ा तो आनंद सरोवर बनाया गया, वो भी वहां भी 3,000-4,000 लोग रहते हैं। वो भी छोटा पड़ गया तो मान सरोवर बनाया गया, वो भी 8,000 लोगों को रहने हुआ, वो भी छोटा पड़ गया। भगवान ने वरदान दिया कि जो बनाओगे सब छोटा होगा, और सचमुच आज जितना भी हम बड़ा करते हैं वो छोटा होता जाता है, भगवान का वरदान। तो ये यज्ञ का काम परमात्मा चला रहा है, कोई इंसान नहीं चला रहा है, कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, परमात्मा का काम है। समय हो गया है, सुनाने को बहुत दिल कर रहा है लेकिन समय की मर्यादा है, हमारे स्पीकर आ गए हैं तो मैं यहीं विराम देता हूं। तो ये भगवान का काम है। आज इतने बड़े डॉक्टर्स को, या डॉक्टर्स हर ग्रुप में बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कन्विंस होकर के जाते हैं, कौन कर रहा है, बाबा करा रहा है, परमात्मा करा रहा है। और सचमुच हम आप लोगों को यही कहेंगे, सेंटरों पर जाकर के 7 दिन का कोर्स करिए, इसकी गहराई में जाइए, इसकी अनुभूति करिए। आप जन्मते डॉक्टर नहीं थे, परिवार में आप 2-3 भाई बहने थे, उस 2-3 भाई बहनों में एक आप डॉक्टरी पढ़ा तो आज कितने बड़े डॉक्टर हुए, समाज की सेवा कर रहे हैं। कैसे बने, पढ़ाई से उस चीज को अपने जीवन में उतारा। तो ये दैवी गुण अपनाएंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा आपको, शिव बाबा आपको देवता बनाएगा। आज डॉक्टर हैं आपके शहर के लोग, आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जिस दिन देवता बनेंगे सारे विश्व के लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा गुण धारण करो, नर श्री नारायण बने, नारी श्री लक्ष्मी बने। यही एक विश्वविद्यालय है कि नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने की एजुकेशन दी जाती है, दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ओके, ओम शांति, थैंक यू।